समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। रोज की तरह ये सुबह भी लाई है एक नए उजाले के साथ, एक नई उम्मीद की किरण। और ये सुबह हमें यही बताती है कि हर रात के बाद एक सवेरा है और हमें अपनी राह पर बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश के ताजातरीन समाचार, साथ ही वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के सेडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और रेनू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। Dear listeners, we are going to bring to you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we will bring you the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 9th of May. So, Siddharth, headlines se shuruaat karein.
Ji haan, nazar daate hain tak ke mukhya samacharon par. लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमपेट में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक एक वोट से देश मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने विजयवाड़ा में भी एक रोड शो किया।
Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will chair a two-day conference, Parivartan Chintan 2, on jointness and integration of armed forces in New Delhi beginning today. Parivartan Chintan, a pioneering conference for the heads of all tri-services institutes and aims at generating novel reformative ideas and initiatives. Members from all the subcommittees of the Apex Chiefs of Staff Committee, the CDS as its permanent chairman, and the three service chiefs shall review the progress made in multiple domains and ideate on the necessary reforms to achieve the desired end state towards transformation through jointness and integration.
दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच के बाद केवल 238 नामांकन वैध पाए गए हैं। प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। इस बीच राजधानी में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों के उम्मीदवार समर्थकों के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं।
India's Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra arrived in Dhaka on a short trip to Bangladesh yesterday. In a social media post, Bangladesh Foreign Ministry shared details about Quatra's visit, saying that he is expected to meet PM Sheikh Hasina, Foreign Minister Hassan Mahmood, and also hold meeting with the Foreign Secretary of Bangladesh, Masood bin Momin, today. Recently, in February, External Affairs Minister S. Jayashankar extended a warm welcome to Bangladesh Foreign Minister Hassan Mahmood. Many arrived in India, emphasizing that their discussions aim to fortify the enduring friendship between India and Bangladesh.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इसमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। पिछले महीने 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे।
External Affairs Minister S. Jayashankar has said that every political party in the country is committed to ensure that Pakistan Occupied Kashmir, POK, which is a part of India, returns to India. Interacting with the students at the Gargi College in New Delhi, Dr. Jayashankar said, the POK issue has come to the front of people's thinking after revocation of Article 370 in Jammu and Kashmir. The minister said that people assumed Article 370 could not be changed as the politics of the day had driven it deeply into the public consciousness. The minister further highlighted that there is a parliament resolution for POK and every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India.
नजर डालते हैं मौसम पर. मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. अगले दो दिनों तक पुदुचेरी और चार दिनों तक गुजरात के तटीय इलाकों में गर्म और नमी भरा मौसम बना रहेगा. देश के उत्तर पूर्वी भाग में इस महीने की 12 तारीख तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी अगले तीन दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी. देश के दक्षिणी भाग में भी अगले चार दिनों तक बारिश होने का अनुमान है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले तीन दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है. देश के अधिकतर हिस्से में अधिकतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है.
And moving on to sports, star Indian table tennis player Manika Batra stormed into the quarterfinals of the Saudi Smash in Jeddah, beating world number 14 Nina Mittelham of Germany. Batra defeated Mittelham 11-6, 11-9, 11-7 to seal her maiden last eight entry in the event. This is Batra's first win over Mittelham in four attempts. Now the Indian will face another formidable rival, world number 5, Hina Hayata of Japan, for a place in the semifinals today.
और अब बात करते हैं देश में चल रहे आईपीएल फीवर की. आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हरा दिया. सनराइजर्स हैदराबाद ने सिर्फ 9 ओवर 4 गेंद में बिना कोई विकेट खोए 167 रन बनाकर मैच जीत दिया. ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. आज धर्मशाला के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार. और श्रोताओं, मुख्य समाचारों के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में अब समय है मेट्रो न्यूज का. और सबसे पहले चेन्नई की खबरें जानते हैं.
थैंक यू सिद्धार्थ. बिगनिंग विद चेन्नई, एज यू राइटली सेड, दुबई बेस्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग इट्स इंटीग्रेटेड चेन्नई बिजनेस पार्क बाय एन एडिशनल 1 मिलियन स्क्वायर फीट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स. The company is developing its largest free trade warehouse zone in the country in an area of 125 acres with 2 million square feet in phases. The facility is located around 30 kilometers north of Chennai. Ranjit Ray, vice president of the company, says that as Tamil Nadu will be the second largest economy in the country and a major industrialized state, it would be a great facility to serve the entire East Coast. More news from Chennai. IIT Madras has raised ₹513 crore for the alumni, corporates and donors in the fiscal year 2023-24, an increase from ₹218 crore in 2022-23. Apart from delivered funds, it has got pledges for funding spanning over a few years, taking the total new pledges to ₹717 crore for this financial year. Director V. Kamakoti has said that the institute had attracted the highest number of external funding in the past 2 years and expected that the funding size would be upward of ₹500 crore mark. Moving on to Bengaluru, Lieutenant General A.K. Singh, who is the General Officer Commanding in Chief of Southern Command, inaugurated an industry interface in Bengaluru. The leading personalities from academia and industries attended the function. Indian Institute of Science and private universities and over 100 enterprises were part of this event. While addressing the invitees, Lieutenant General A.K. Singh highlighted the enormous opportunities presented for the defense manufacturing in Bengaluru. Lieutenant General K.S. Barar, who is the General Officer Commanding Area, talked about various options available with MSMEs and startups from various agencies of the Army. Similar industry interface was organized in Chennai, Pune and Hyderabad, and the event is scheduled in Coimbatore by the end of this month. And the last news that I have is from Hyderabad, Siddharth. The Indian Council of Medical Research, ICMR, has released an upgraded dietary guidelines for Indians to suit the modern eating habits of 2024. framed by researchers from Hyderabad-based National Institute of Nutrition, NIN, the modern dietary guidelines specifically advise people to be physically active, exercise regularly, restrict intake of salt, minimize high-fat, sugar, ultra-processed foods, and take steps to prevent abdominal obesity, overweight, and overall obesity. The NIN in the report has framed 17 dietary guidelines that emphasize on health promotion, disease prevention across all age groups, and special attention on healthy diets. DG ICMR Dr. Rajiv Behl released the report and said the dietary habits of Indians have undergone significant changes over the past decades, leading to an increase in the prevalence of non-communicable diseases. And now moving on to you, Siddharth, let's have some news from Delhi Metro.
जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं. और रेनु, जिस तरह से आज आपने सुबह सुबह हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें हेल्दी डाइट के बारे में बताया है, तो बेहद जरूरी है कि अपनी लाइफ में जो डाइट है उसको हम बैलेंस करें और एक अच्छी जो लाइफ स्टाइल है या जीवन शैली है उसको हम मेंटेन करें.
बिल्कुल.
बढ़ते दिल्ली के समाचारों की ओर, बच्चों में लेखन की क्षमता को विकसित करने के लिए साहित्य अकादमी 3 से 7 जून के बीच अपने दिल्ली परिसर में कार्यशाला का आयोजन करेगी. इस कार्यशाला में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साहित्य अकादमी ने बताया है कि किस्सा और कलम बोलती कलम शीर्षक से आयोजित इस कार्यशाला का ये 5वां संस्करण है. इस कार्यशाला में 9 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं और कार्यशाला के बारे में ज्यादा जानकारी साहित्य अकादमी की आधिकारिक वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं. और रेनु, इस समय गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता कि हम बच्चों के लिए इस तरह की साहित्यिक जो एक्टिविटीज हैं जिससे उनके अंदर जो लिखने की क्षमता है वो डेवलप हो, तो ये बहुत ही अच्छी वर्कशॉप है. तो मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स बड़ी संख्या में किस्सा और कलम बोलती कलम वाली इस वर्कशॉप में जाने वाले हैं.
जी बिल्कुल जाएंगे.
बढ़ते अगली खबर की ओर, स्कूली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 10 से 28 जून के बीच ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जाएगा. ये शिविर राजधानी के 4 क्षेत्रों पंजाबी बाग, रोशनारा बाग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और बाल भवन में आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों में छात्रों को सड़क सुरक्षा, आत्मरक्षा, आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि शिविरों का आयोजन 3 खंडों में किया जाएगा. इस दौरान छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी और विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे. इन शिविरों में कक्षा 6 या उससे ऊपर की कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होगी और 31 मई तक चलेगी. शिविर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2584-5629 पर संपर्क कर सकते हैं. और इस बार अपनी समर वेकेशन में ये जो ट्रैफिक पुलिस आपके लिए इस जागरूकता शिविर का आयोजन कर रही है, आप बहुत सारी जानकारी इससे ले सकते हैं रेनू, और ये भी एक बहुत अच्छा कदम है.
जी बिल्कुल, पीपल हैव टू बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स हैपनिंग.
जी, और इसके बाद अब हम रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का. और प्री मॉनसून रखरखाव कार्य करने के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 2 रनवे आज 6 घंटे की अवधि के लिए बंद रहेंगे. हवाई अड्डा संचालक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्री मॉनसून रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मॉनसून आकस्मिक योजना के हिस्से के रूप में प्राथमिक रनवे अस्थायी रूप से परिचालन के लिए बंद रहेगा. विज्ञप्ति में कहा गया है कि रनवे के रखरखाव और मरम्मत कार्य से किसी भी उड़ान की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी या उसकी यात्रियों को असुविधा नहीं होगी, तो जो फ्लाइट्स का जो परिचालन है वो सामान्य रहेगा. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव स्वाधीन शेट्टी ने कहा है कि शासकीय सेवा में कार्य करते समय नागरिक कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करना उचित होता है. वो कल मुंबई में राज्य सचिवालय में सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि समाज के प्रति जिम्मेदार रहते हुए सरकार में आने के बाद जो भूमिका मिले उसे निभाना होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को समय समय पर कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए. प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक संगीत सिवन का कल मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने मलयालम और हिंदी में लगभग 20 फिल्मों का निर्देशन किया। उन्हें मोहनलाल के साथ फिल्म योद्धा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। हिंदी सिनेमा में उन्होंने क्या कूल हैं हम, अपना सपना, मनी मनी और यमला पगला दीवाना 2 का निर्देशन किया था। और अब रुख देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का। और अप्रैल में भीषण गर्मी के बाद कोलकाता समेत पूरे बंगाल में बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा गंगा के तटवर्ती और उपहिमालयी बंगाल में 11 मई तक गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कोलकाता में फिलहाल सोमवार से ही बारिश हो रही है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। जी हाँ, बात हुई है मौसम की, तो नजर डाल लेते हैं अब मेट्रो के मौसम पर। और सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है और 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई का रुख करें तो वहां आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में फिलहाल जैसा कि हमने बताया कि तेज हवाएं चलेंगी और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और रेणु देश के बाकी महानगरों में मौसम का क्या हाल है?
When I see at the other cities, the weather looks little, there's little respite in the weather, I think, in all the three metros of our southern states. Like Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
बिल्कुल, अब वक्त हो चला है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गईं। 1502 में दुनिया के सबसे बड़े खोजी यात्री और नई दुनिया के खोजकर्ता माने जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता तलाश करने के लिए स्पेन के कादिस से अपनी चौथी यात्रा शुरू की थी।
In 1914, on this day, that is 9th of May, President Woodrow Wilson issued a presidential proclamation that officially established the first national Mother's Day holiday to celebrate America's mothers. Many individual states celebrated Mother's Day by 1911, but it was not until Wilson lobbied Congress in 1914 that Mother's Day was officially set on the second Sunday of every May. Or Siddharth, Mother's Day jaldi aa raha hai.
Yes. भी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोगों ने कैंपेन भी शुरू कर दी है
जी, और बच्चे बहुत दे लुक फॉरवर्ड टू दिस डे। In this, in his first Mother's Day proclamation, Wilson stated that the holiday offered a chance to publicly express our love and reverence for the mothers of our country.
1874 की बात करें तो उस समय तत्कालीन जो मुंबई था वहां पे पहली बार घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम कार की शुरुआत हुई थी।
In 1926, according to their claims, polar explorer Richard E. Byrd and co-pilot Floyd Bennett fly over the North Pole on this day in the Josephine Ford, a triple-engine Fokker monoplane. It would have been the first time an aircraft flew over the top of the world. The pair had taken off from Spitsbergen, Norway, and reportedly covered the 1,545-mile trip to the pole and back in 15 hours and 30 minutes. And in 1933, Gandhiji announced suspension of civil disobedience movement for 6 weeks and called for the government to withdraw its ordinances. In 1960, the Food and Drug Administration, or the FDA, approved the world's first commercially produced birth control pill, Inovoid 10, made by the GD Cell Company of Chicago, Illinois. And the last event is in from the year 1962. A laser beam was successfully bounced off the moon for the first time, sent by a team of scientists from MIT. It was the first successful lunar laser ranging experiment measuring the distance between the Earth and the moon.
और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में वक्त हो चला है उन लोगों को याद करने का जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं पुण्यतिथि की। आज कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की पुण्यतिथि है, जो हिंदी के जाने माने निबंधकार थे, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी कन्हैयालाल कर चुके हैं। कन्हैयालाल मिश्र की मुख्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना काफी प्रसिद्ध हुए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें शैलियों का शैलीकार कहा था।
And today is the birth anniversary of Tenzing Norgay GMOSM, born Nimgyal Wangdian, also referred to as Sherpa Tenzing, who was a Nepalese Indian Sherpa mountaineer. He was one of the first two people known to certainly reach the summit of Mount Everest, which he accomplished with Edmund Hillary on 29th May 1953. Time named Norgay one of the 100 most influential people of the 20th century. And in 2003, commemorating the golden jubilee of Norgay's summit of Everest, the Indian government renamed its highest adventure sports award, the Tenzing Norgay National Adventure Award, after him. Mm-hmm. In 2011, also, Siddharth, this is very interesting, Indian comic publisher Amar Chitrakatha released a children's comic book about Tenzing Norgay, and one of the buildings at Everest Court, Mottingham in Kent, England, is named after him. And Tenzing Montes is the name of an icy mountain range on the surface of Pluto, and the minor planet 6481 Tenzing is named in his honor.
बिल्कुल, तेंजिंग नोर्गे की बात हो रही है। 29 मार्च 1953 का ही दिन था जब 8,848 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो अगर इरादे मजबूत हों रेनू, तो हम कुछ भी जीवन में कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने कर दिखाया।
Where there's a will, there is a way.
Exactly. और बढ़ते हैं अगली पर्सनालिटी को। राजी पुण्यतिथि है करमशी जेठाभाई सोमैया की, जो देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 2000 में समाज के लिए उनकी सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कई कॉलेजेस का नाम उनके नाम पर रखा गया था।
Today is the birthday of William Martin Joel. He was an American singer, songwriter and pianist, commonly nicknamed the Piano Man after his signature 1973 song of the same name. Joel has had a successful music career as a solo artist since the 1970s. From 1971 to 1993, he released 12 studio albums that spanned the genres of public and rock music, and in 2001 released a one-off studio album of classical music compositions. Joel is one of the world's best-selling music artists and the fourth best-selling solo artist in the United States, with over 160 million records sold worldwide. Across the years of his solo career, Joel produced 33 self-written top 40 hits in the US, three of which, It Still, Rock and Roll to Me, Tell Her About It, and We Didn't Start the Fire, topped the Billboard 100. Joel has been nominated for 23 Grammy Awards, winning 6 of them, including Album of the Year for 52nd Street. Here, we would be listening to his beautiful song, We Didn't Start the Fire.
श्रोताओं, आज ही जयंती है गोपाल कृष्ण गोखले की, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ की क्षमता के कारण उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले जी 1905 में आजादी के पक्ष में अंग्रेजों के समक्ष लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए और अत्यंत प्रभावी ढंग से देश की स्वतंत्रता की बात उन्होंने वहां रखी और जिसका प्रभाव भी पड़ा।
Today is the birthday of Mallika Sarabhai, who is an activist and Indian classical dancer and actress from Ahmedabad, Gujarat, India, daughter of a classical dancer, Mrinalini Sarabhai, and space scientist Vikram Sarabhai. Mallika is an accomplished Kuchipuri and Bharatanatyam dancer and performer who has specialized in using the arts for social change and transformation. And talking about awards, Siddharth, government of Gujarat awarded her with Gaurav Puraskar for the contribution in the field of drama and dance. She received the Padma Bhushan by the government of India. The French government awarded her with the Knight's rank in the Order of Academic Palms in 2005 for her contribution in the field of drama and dance.
और आज ही जयंती है स्नेहमयी चौधरी की, जो हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री थी। उन्हें विशेषतः उनके कविता संग्रहों के लिए जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कविता में पूरा गलत पाठ, चौतरफा लड़ाई और हड़कंप प्रमुख हैं, जबकि पहचान, कैद, अपनी ही औरत, एक इंटरव्यू, घर, मेरा अपना कोना, लड़की उनकी प्रमुख कविताएं हैं।
Today is the death anniversary of Talat Mehmood, who was an Indian playback singer who is considered as one of the most popular male Indian film song and ghazal singers. Although he tried his luck as a film actor, he did not succeed a great deal in acting. Talat Mehmood received the Padma Bhushan Award in 1992 in recognition of his artistic contributions in the spheres of cinematic and ghazal music.
शुरुआत में उन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए थे। बेहद सौम्य और विनम्र स्वभाव के तलत महमूद के लिए संगीत एक जुनून था, जबकि उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में पहचान दिलाई। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही गजल गायक के तौर पर अपने सफर की शुरुआत करने वाले तलत महमूद ने उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्रियों सुरैया नूतन और माला सिन्हा के साथ भी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था।
He was particularly famous for singing soft and somber ghazals in his quivering and silky voice. Romantic and tragic were the moods he liked most, and it was he who helped a great deal in shaping the style and method of modal ghazal singing in India during the 1950s and 60s.
तलत महमूद ने अपने लंबे करियर में हिंदी समेत विभिन्न भाषाओं में करीब 800 गीत गाए। संगीत में उनके योगदान के लिए 1992 में तलत महमूद को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तलत महमूद आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दिलकश आवाज आज भी हमारे दिलों में धड़क रही है।
जन्म जन्म से साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा।
तो अपनी गायकी से सभी का दिल जीतने वाले
एक और इंटरेस्टिंग चीज हाँ जी एक जी। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। तलत महमूद बिगैन हिज सिंगिंग करियर एट द एज ऑफ 16 इन 1939 एंड ही बिगैन सिंगिंग द गजल्स ऑफ दाग मीर जागीर एटसेट्रा ऑन ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।
क्या बात है, तो आकाशवाणी ने उन्हें पहचान दी और ये तो बात हो ही गई। और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए सिद्धार्थ सिंह और रेणु कटारिया को। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी कोट।
Yes, and please stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.